الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استطاع. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلى الآخر، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس والے درس کے اندر ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھتے ہیں، اور ہماری جو ریفرنس بک ہے وہ ہے مارک القرآن جلد 3 اور آیات نمبر 59, 60, 61, 62, 59, 60, 61, 62, 59, 60, 61, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 5 के ऊपर हम इनके बारे में मसाइल पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने पहला पैराग्राफ जो है मुकम्मल किया था और इल्मुल गैब के बारे में बात करनी हमने शुरू करनी है, जहाँ तक सारे इसको याद पड़ता है। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और इन आयात के अंदर फरमाते हैं कि उसी उसी के पास, यानी अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला अपने बारे में फरमाते हैं कि उसी के पास हैं गैब की चाबियां, गैब के खजाने, जिनका इल्म सिर्फ उसको है, किसी और को नहीं है। उन सब का इल्म सिर्फ उसको है, अल्लाह को है। और उसको इल्म है जो कुछ खुश्की में है और तरी में है, और कोई पत्ता नहीं गिरता सिवाय इसके कि वो उसके इल्म में होता है, और कोई ना कोई दाना, हब्बा का लफ्ज जो है वो दाने के लिए इस्तेमाल होता है, जर्रे के लिए इस्तेमाल होता है, सबसे छोटा जो भी एटम हो उसके लिए हब्बा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और ना कोई हब्बा गिरता है जमीन की तारीकियों के अंदर, गुलुमातिल अर्द, ठीक है, इल्ला यालमुहा, यानी यही जो है बात है, इसके ऊपर भी आ रहा है कि सिवाय इसके कि अल्लाह ताला के इल्म में होता है, ठीक है। तो गिरने से मुराद यहाँ पर क्या है कि अपनी जिंदगी पूरी कर ली और अब उसका इख्तिताम हो गया, तो उसका इख्तिताम होना भी अल्लाह इल्म में है। तो नतीजा ये अखज करते हैं कि जब इख्तिताम का यानी इंतहा का अल्लाह को इल्म है, तो इब्तिदा का भी अल्लाह को इल्म, ठीक है। जिसको इंतहा का इल्म होता है उसको इब्तिदा का भी इल्म होता है, और दरमियान का जो वक्त होता है उसका भी इल्म होता है। तो एक एक लम्हे का नहीं बताया अल्लाह ताला ने कि मुझे इब्तिदा का भी इल्म है, मुझे दरमियान का भी इल्म है, मुझे उसके बाद का भी इल्म है, बल्कि इंतहा का जिक्र कर दिया, और इससे फिर हमने नतीजा निकाल दिया। नहीं, हमारे जो मशायख हैं, उलमाए कराम हैं, मुफस्सरीन हैं, उन्होंने नतीजा निकाला कि सब कुछ अल्लाह ताला को मालूम है, किसी पत्ते के बारे में भी, किसी जर्रे के बारे में भी, वला रतबिन वला याबिसिन, और ना ही कोई हरी चीज और ना ही कोई सूखी चीज। हरी चीज से मुराद क्या होता है कि जिसके अंदर कुछ तरी होती है, पानी होता है, पानी ही से तरी होती है, तो किसी चीज के अंदर यानी रुतूबत होती है, उर्दू में रुतूबत का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। तो ला रकबिन वला याबिसिन, और ना कोई सूखी चीज, इल्ला फी किताब मुबीन, सिवाय इसके कि वो एक खुली हुई किताब के अंदर लिखी हुई है, या वो वाज़ह अंदाज में तय शुदा है, वाज़ह अंदाज में तय शुदा है, किताब मुबीन, ठीक है। वहुअल नदी यतवफ्फाकुम बिल्लैली, और वो वही है जो कि तुमको रात के वक्त वफात देता है। ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल जो है वो इल्म गैब की जो तफसीर हजरत ने लिखी है वो हम पढ़ रहे हैं कि कुरानी इस्तेलाह में इल्म गैब और कुदरत आमा मुतलका सिर्फ अल्लाह ताला की सिफत खास है, कोई मखलूक इसमें शरीक नहीं है। कोई भी मखलूक यानी अल्लाह के अलावा सब कुछ क्या है, अल्लाह की मखलूक है, ठीक है। कलामुल्लाह ये अल्लाह की मखलूक नहीं है, ये अल्लाह ताला की सिफत है। अल्लाह ताला बात फरमाते हैं ना, तो ये बात जो है वो अल्लाह की सिफत है, ठीक है। लेकिन ये कलाम जिस किताब में लिखा हुआ है, जिस कागज के ऊपर लिखा हुआ है, वो अल्लाह की मखलूक ही है। ठीक है, तो अल्लाह के अलावा सब कुछ अल्लाह की मखलूक है, तो किसी मखलूक को इल्मे गैब हासिल नहीं। ठीक है, अब मसला ये है कि भाई कुछ चीजें गायब हैं लेकिन हमें तो कुछ लोगों को पता चल जाती हैं। ठीक है, तो फिर इस बात की हकीकत समझने की जरूरत पड़ती है कि भाई इल्म गैब से मुराद क्या है। तो फरमाते हैं कि लफ्ज गैब से मुराद वो चीजें हैं जो अभी वजूद में नहीं आई या वजूद में तो आ चुकी हैं मगर अल्लाह ताला ने उन पर किसी को मुतला नहीं होने दिया है। ठीक है, तो ये पहली लाइन ही जो है ना, ये इल्म गैब की जामे और मान्य तारीफ है। ठीक है, ऑल इनकम्पसिंग कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन कि इल्मे गैब में दो तरह की चीजें हैं, एक तो वो जो कि वजूद में आई ही नहीं है और दूसरी वो जो कि वजूद में तो आ गई हैं लेकिन अभी तक किसी को उनके बारे में पता नहीं हुआ है, किसी को भी। ठीक है, नॉट इवन ए सिंगल मखलूक नोज अबाउट इट, तो उसको इल्मे गैब। पहली किस्म की मिसाल वो तमाम हालात वाकयात हैं जो कयामत से मुतालिक हैं या कायनात में आइंदा पेश आने वाले वाकयात से ताल्लुक रखते हैं, मसलन ये कि कौन कब और कहाँ पैदा होगा, क्या क्या काम करेगा, कितनी उम्र होगी, उम्र में कितने सांस लेगा, कितने कदम उठाएगा, कहाँ मरेगा, क्या दफन कहाँ दफन होगा, रिस्क किसको कितना और किस वक्त मिलेगा, बारिश किस वक्त कहाँ और कितनी होगी। ठीक है, और इस क्लास के खत्म होने के बाद आपके साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, ये भी इल्म गैब। बल्कि क्लास खत्म होना तो क्या, इस वक्त अगर 8:57 AM हो रहा है सऊदी अरब के अंदर और पाकिस्तान में 10:57 या 58 अब हो गया है। ठीक है, तो 10:59 के ऊपर पाकिस्तान में क्या होने वाला है ये भी किसी को पता नहीं। ठीक है, बल्कि 1 सेकंड बाद भी क्या होने वाला है ये भी किसी को पता नहीं। ठीक है, अजम्पशंस और एस्टिमेशंस ये इल्म को नहीं कहते। ठीक है, जैसे पिछले दिनों काफी बात हुई है, बच्चों की क्लास में भी बात हुई, जुमे के दर्स में भी बात हुई कि इल्म जो है ना वो अजम्पशंस को नहीं कहते। ठीक है, मेरा ख्याल है कि 2 मिनट के बाद ये होने वाला है, मेरा ख्याल है कि 2 मिनट के बाद भी वही रहेगा जैसे कि अभी है, मैं जिंदा रहूंगी 2 मिनट के बाद भी, ये आपका ख्याल है, आपको पता नहीं है। ठीक है, आपको पता नहीं है कि आप 2 मिनट के बाद जिंदा रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ये आपका ख्याल है, ये आपका गुमान है। यू आर एज्यूमिंग दैट यू विल कंटिन्यू टू लिव आफ्टर 2 मिनट्स, यू आर एज्यूमिंग, यू डोंट नो, पता नहीं है हमें। ठीक है, तो इल्म का मतलब तो होता है पता होना, मालूम होना। ठीक है, ख्याल होना, गुमान होना, ये इल्म नहीं कहलाता है। ठीक है, तो इल्म गैब का तो मतलब है पता है कि क्या होने वाला है, वो किसी को भी नहीं पता। ठीक है, तो सिर्फ अल्लाह को पता है। अच्छा, दूसरी किस्म की मिसाल वो हमल है जो औरत के रहम में वजूद तो इख्तियार कर चुका है मगर ये किसी को मालूम नहीं कि लड़का है लड़की है, खूबसूरत है या बदसूरत है, नेक तबीयत है या बदखसलत है, ये सारी कोई भी सिफत नहीं पता है। इसी तरह और चीजें जो वजूद में आ जाने के बाद मखलूक के इल्म और नजर से गायब है। ठीक है, किसी मशीन के जरिए से, किसी किसी टूल के जरिए से किसी चीज का मालूम किया जाना तो ये फिर उसको इल्म गैब में से बाहर निकाल देता, वो इल्म गैब में है ही नहीं। आगे ये इसकी तफसील आ रही है। इंदहु मफातिहुल गैबी के मानी ये हुए कि अल्लाह के पास है खजाने गैब के, उसके पास होने से मुराद उसकी मिल्क, उसके पास होने से मुराद उसकी मिल्क और कब्जे में होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला समेट करके अपने सामने रखे हुए हैं, गोया कि जैसे कोई अपनी तिजोरी में रख लेता है, कोई अपने जो है वो पॉकेट में चीजें रख लेता है तो उसको कहता है कि ये मेरी चीजें हैं, ये मेरे पास है। ठीक है, अगर कोई चीज दूर होती है लेकिन आपकी मिल्कियत में होती है तो उसको भी आपके पास ही से ताबीर किया जाता है। ठीक है, लैंग्वेज के अंदर उसको आपके पास ही कहा जाता है अगरचे कि वो आपसे फिजिकली दूर है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी मामला है कि अल्लाह ताला से फिजिकली तो ये चीजें दूर है, डिस्टेंस है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ये अर्श पर है। ठीक है, अर्श पर है और बाकी चीजें जो है वो फर्श पर हैं या आसमानों में है। ठीक है, या जो है वो दरमियान में है, आसमान और जमीन के दरमियान कहीं पर है, तो फिजिकली दूर है लेकिन अल्लाह ताला के मिल्क में और कब्जे में है। मतलब ये हुआ कि गैब के खजानों का इल्म भी उसके कब्जे में है और उनको वजूद व जहूर में लाना भी उसी की कुदरत में है कि कब कब और कितना कितना वजूद में आएगा। यानी जो चीज अभी वजूद में नहीं आई उसको वजूद में लाना भी किसी और की कुदरत में नहीं है बल्कि सिर्फ अल्लाह की कुदरत में है। जैसे कि कुरान करीम की एक दूसरी आयत में मजकूर है, वह इम मिन शैइन इल्ला अंदना खजाइनुहु वमा नुनज्जिलुहु इल्ला बिकदरिन मालूम। यानी हमारे पास हर चीज के खजाने हैं मगर हम हर चीज को एक खास अंदाज से नाजिल करते हैं। यानी अल्लाह ही नाजिल करते हैं उसको, यानी जाहिर करते हैं उसको, और एक खास अंदाज से जो कि अल्लाह ताला की मर्जी होती है उसके मुताबिक। हालात वाकयात ये भी इसमें शामिल हो गए, कोई बीज में से पौधा निकलना ये भी इसमें शामिल हो गया, किसी जानवर की औलाद होना ये भी इसमें शामिल हो गया। हर चीज अल्लाह ताला करते हैं, ठीक है, और खुद करते हैं। फरिश्तों से करवाने का मतलब ये नहीं होता कि फरिश्तों के पास कोई ताकत है, कोई अथॉरिटी है कि वो अब अपना काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला जो है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला इवन एक एक फरिश्ते के एक एक अमल के अंदर अल्लाह ताला डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। हर एक फरिश्ते को अल्लाह ताला अलग से हुक्म करते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, ठीक है। अब फरिश्ते कितने हैं हम तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते। खुलासा यह है कि इस जुमले से हक तआला का बेमिसाल कमाल इल्मी भी साबित हो गया और कमाल कुदरत भी साबित हो गई। यानी इल्म भी कामिल है और कुदरत भी कामिल है 100%, कोई इसके अंदर 0.00001% भी कमी नहीं है अल्लाह के इल्म में और अल्लाह की कुदरत में। और ये भी कि ये इल्म मुहीत और कुदरत मुतलका सिर्फ अल्लाह जल्ला शानहू की सिफत है और किसी को हासिल नहीं हो सकती। मुतलक कुदरत जो है ना, एब्सोल्यूट 100% फाइनल, ये सिर्फ अल्लाह ताला के अलावा किसी को भी हासिल नहीं। आयत में लफ्ज अंदहू को मुकद्दम करके कवायद अरबियत के मुताबिक इस हसर और इख्तिसास की तरफ इशारा कर दिया गया है। जुमे के दर्स में भी बात हुई थी, ये यहाँ पे तो एक रिपीटेशन ही चल रही है इस वक्त क्योंकि सारे आप जुमे में नहीं होते। तो इंदहू जो पहले लेकर आए ना, इंदहू खजा मफातिहुल गैबी, इंदहु मफातिहुल गैबी, तो एक नॉर्मल सा अरबी का जुमला क्या होता है, मफातिहुल गैबी इंदहु, ठीक है, मुब्तदा मफातिहुल गैबी, गैब की चाबियां, उसकी खबर क्या है कि इंदहु अल्लाह के पास है। तो एक नॉर्मल जुमला इस्मिया अरबी जुबान में ऐसे होता है, मुब्तदा पहले आता है उसके बाद उसकी खबर आती है, उसके बारे में कोई न्यूज आती है, ठीक है। यहां पर क्या है, खबर को मुकद्दम किया गया है, इंदहू ये खबर है, ये न्यूज बताई जा रही है किसके बारे में, वफातिहुल गैब के बारे में। नॉर्मल अरबी जुमला ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से जो जुमला लेकर आए हैं ना अल्लाह रब्बुल इज्जत, तो ये एक इशारा है हसर की, ठीक है, कि बस इसके अलावा तो कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसको हसर करना कहते हैं, महसूर कर देना किसी चीज को किसी दूसरी चीज के अंदर, इसके अलावा कोई यानी ये इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। लेकिन मफातिहुल गैब जो है अल्लाह की मिल्कियत से बाहर निकल ही नहीं सकती, किसी दूसरे की मिल्कियत में जा ही नहीं सकती, ठीक है, ये होगा इसका तर्जुमा, इंदहु मफातिहुल गैब, ठीक है, अल्लाह की मिल्कियत में से निकल ही नहीं सकती और किसी दूसरे की मिल्कियत में जा ही नहीं सकती अल्लाह की मिल्कियत से निकल के, ठीक है। तो ये इसका जो इसका तर्जुमा बनता है, और फिर इसी बात को जो है वो पहले इशारतन बात यानी बयान फरमाया, फिर उसके बाद सराहतन बयान फरमाया। सराहतन का मतलब एक्सप्लिसिटली, पहले इम्प्लिसिटली अब एक्सप्लिसिटली, ठीक है, सराहत में तब्दील करके पूरी तरह दिल नशीन करने के लिए इरशाद फरमाया, ला यालमुहा इल्ला हु, यानी इन खजाइन गैब को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, ठीक है। तो ये हसर जो है ना, ये अल्टीमेट हसर जो है वो नेगेटिव तरीके से होता है, ठीक है। पहले जो था ना इंदहु मफातिहुल गैब, ये अल्टीमेट हसर नहीं था। अल्टीमेट हसर का मतलब हसर की आखरा हसर का आखिरी दर्जा नहीं था। क्यों? इसलिए कि ये पॉजिटिव तरीके से बात हो रही थी, अब जिनको थोड़ा बहुत उसकी वाकफियत है उनके समझ में आ जाएगी ये बात इंशाल्लाह कि ये ऐसे नहीं फरमाया ला इंदहु मफातिहुल गैब, ला से जुमला शुरू नहीं किया बल्कि इंदहु है उसके मिल्क में, है उसके पास मफातिहुल गैब, ठीक है। तो ये हसर की तरफ इशारा है लेकिन ये असल हसर नहीं है, ठीक है। असल हसर क्या होता है कि जिसके अंदर पहले जो उसके अलावा चीजें हो सकती हैं उनकी नफी कर दी जाए, फिर उसके बाद किसी चीज का इस्बात किया जाए, किसी चीज को प्रूफ किया जाए। पहले उसके अलावा जो बातें हैं ना उनको डिसप्रूव किया जाए, उसके बाद बात को प्रूफ किया जाए, ठीक है। ये असल हसर होता है, जैसे कि ये है ला यालम इल्ला, ठीक है। तो किसी को उनका इल्म नहीं है, अब ये क्या किया जा रहा है, किसी को उनका इल्म नहीं है, ये डिसप्रूव किया जा रहा है, किसी भी दूसरे के इल्म को डिसप्रूव किया जा रहा है, निगेट किया जा रहा है, और फिर उसके बाद इल्ला करके हुआ, इस बात किसका किया जा रहा है, प्रूफ किसको किया जा रहा है, हुआ इल्ला हुआ सिवाय उसके, ठीक है। तो ये जो है ना फिर सराहतन हसर हो गया, ला यालमुहा इल्ला हुआ, ठीक है। इसकी मिसाल भी दी थी कि जैसे ला इलाहा इल्ला अल्लाह, इल्ला अल्लाह पढ़ते हैं ना, तो क्या है वो इल्ला अल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल हसर की का आखिरी दर्जा है कि सारे दूसरे माबूदों की नफी कर दी कि कोई और जो है ना अल्लाह के अलावा जो कोई भी और है वो तो माबूद हो ही नहीं सकता, कौन हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसलिए इस जुमले से दो बातें साबित, अव्वल तो हक तआला का तमाम गैब की चीजों पर इल्म मुहीत के साथ मुत्तला और इन सब पर कुदरत कामिला के साथ कादिर, इल्म मुहीत हर चीज को इहाता, हर चीज को सराउंड करने वाला इल्म, और सिर्फ इल्म का होना नहीं बल्कि कुदरते कामिला के साथ कादिर भी होना। मिसाल के तौर पर हमें किसी चीज का इल्म होता है, भाई मुझे पता है कि कराची में जो है ना वो हमारे घर में इस वक्त क्या हो रहा है, ठीक है, किसी ने बता दिया, या जो है वो कोई वीडियो कॉल, फॉर एग्जाम्पल आपने वीडियो कॉल लगा ली और जी आप देख रहे हैं कि जी फलानी जगह पे ना वो उस ये काम हो रहा है, लेकिन कैन यू डू एनीथिंग अबाउट, क्या आप उसके बारे में कुछ कर भी सकते हैं, नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर गजा, गजा की जो है वो पल पल की वीडियोस बना बना करके पूरी दुनिया के अंदर ब्रॉडकास्ट की जाती है, ठीक है ना, और इसराइल को तो पता ही नहीं होता ये सब कुछ क्या हो रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है उसके कंट्रोल में पूरा का पूरा गजा, तो वीडियोज भी उसके कंट्रोल में ही होती है, उसके कंट्रोल के बगैर कोई भी वीडियो वहां पे नहीं बना सकता है, ठीक है। लेकिन वीडियो बन बन करके अब हमारे पास आती है तो क्या हम यहाँ पे बैठे कुछ कर सकते हैं उसके बारे में, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इल्म तो है हमें कि गजा में क्या हो रहा है लेकिन कुदरत तो नहीं है ना, ठीक है। तो अल्लाह ताला का ऐसा मामला नहीं है कि इल्म तो है लेकिन कुदरत नहीं है, ठीक है, बल्कि कुदरत भी कामिल है, इल्म भी कामिल है। दूसरे दाते हक जल्ल शानहू के सिवा किसी मखलूक या किसी चीज को ऐसा इल्म कुदरत हासिल नहीं है। कर लिया इसको, ठीक है, अब विंडोज मेरी हो जाती है, बंद हो जाती है। चल अच्छा, कुरान की इस्तेलाह में लफ्ज गैब के जो माना बहवाले तफसीर मजहरी ऊपर बयान किए गए हैं, तफसीर मजहरी एक बहुत बड़ी तफसीर की किताब है, इंडिया के अंदर हजरत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने ये तफसीर लिखी, तो उससे जो है ना हजरत ने यहाँ पर उसको नकल किया है कि कुरान की तो इस्तलाह में लफ्ज गैब के जो माना ऊपर बयान किए गए हैं कि वो चीजें जो अभी वजूद में नहीं आई या आ चुकी हैं वजूद में मगर अभी तक किसी मखलूक पर उनका जहूर नहीं हुआ, किसी भी मखलूक पर उनका जहूर नहीं हुआ है, अगर उनको पेश नजर रखा जाए तो मसला गैब पर सतही नजर में जो शुबहात आवाम को पेश आया करते हैं वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अवाम की भी तारीफ बताई थी कि जिनके पास इल्म नहीं होता वही अवाम होते हैं, ठीक है, यानी जिन्होंने आलमा कोर्स नहीं किया होता वो सारे के सारे अवाम होते हैं, और जिन्होंने आलमा कोर्स कर लिया होता है वो खवास हो जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इल्म होना और आलमा कोर्स करना ये अच्छी खासी मुख्तलिफ किस्म की चीजें बन गई हैं, अगर पहले नहीं भी होती थी ना तो अब बन गई हैं, ठीक है। तो डिग्रियां हासिल कर लेने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास इल्म भी आ गया हो, निमट जाहिल भी रहते हैं डिग्री हासिल करने के बाद। तो फरमाया कि जी शैतान तो फिर कहता नहीं, डिग्री जब तक नहीं होगा तो उस वक्त कुछ कुछ नहीं हो सकता, या डिग्री हो गई तो अब तो मैं बन गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो बहरहाल जिनके पास इल्म होता है ना तो वो फिर खवास बन जाते हैं, और जिनके पास इल्म नहीं होता वो आवाम रहते हैं। यहाँ पे इल्म की बात हो रही है, डिग्रियों की बात नहीं हो रही, ठीक है। जिसको इल्म हासिल नहीं करना होता ना वो बहाने तलाश करते हैं, ठीक है ना, बहाने तलाश करता है बस, बस किसी तरीके से मुझे डिग्री मिल जाए, डिग्री मिल जाए, फलाना हो जाए, फलाना हो जाए। तो जिसको इल्म हासिल करना होता है ना तो वो तो फिर करके रहता है, चाहे कुछ हो या ना हो, उसने फिर इल्म हासिल करना होता है, फिर उसको जरूरत नहीं होती इन डिग्रियों की या किसी और खास। बहाने बनाने वाले तो दुनिया में कभी भी कम नहीं होंगे ना, ये ना हुआ और वो ना हुआ और ऐसा ना हो और वैसा ना हुआ। तो मसले गैब पर सती नजर में जो शुभहात अवाम के पेश आया करते हैं तो वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जिसके पास इल्म नहीं होता तो फिर उसकी नजर सतही होती है, सुपरफिशियल नजर होती है उसकी। अच्छा, आम तौर तो पर लोग लफ्ज गैब के लुगवी मानी लेते हैं कि जो चीज हमारे इल्म और नजर से गायब हो, ख्वाह दूसरों के नजदीक उसका इल्म हासिल करने के जराए मौजूद हों, उसको भी गैब कहने लगते, ठीक है ना। तो ये है बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन, कि भाई जो चीज हमें नजर नहीं आ रही ना तो वो गैब है, ठीक है भाई। गायब होना एक अलग चीज है, गैब होना एक अलग चीज है। गैब जो है ना ये एक बड़ी स्पेसिफिक इस्तेलाह है, ये एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, एक टर्म है जिसके के खास मानी है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, जो कुरान मजीद का कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर गैब का लफ्ज, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर तो गायब के मानी बता दिए जाते हैं कि भी जो चीज गायब है वो गायब है, लेकिन डिक्शनरी जो है ये कोई इस्तलाहात को थोड़ी बताती है, ये कोई कॉन्टेक्स्ट को थोड़ी बताती है, तो बस उस लफ्ज के बारे में बता देती है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट होना तो एक बिल्कुल अलग ही चीज है ना। तो जो चीज हमारे इल्म नजर से गायब हो ना वो गायब नहीं होती, अगर वो किसी और के इल्म नजर में आ जाए तो हमारी नजर में तो इल्म में तो उसे तो गायब है, तो क्या वो गायब है? नहीं, वो गायब नहीं है, क्योंकि वो किसी के इल्म में या किसी की नजर में आ गई, अब वो गायब नहीं, वो हमसे गायब है लेकिन वो गायब नहीं है, ठीक है। लेकिन आवाम जो है वो समझते हैं कि जो हमसे गायब वही गायब, वो गायब नहीं है भाई, एक अलिफ से देखें कितना फर्क पड़े, ठीक है। तो इसके नतीजे में तरह तरह के शुभात सामने आते हैं, मसलन इल्म नुजूम, ठीक है, नुजूम नजम से निकला, सितारों को कहते हैं। अब सितारों को देख करके बाकायदा जो नुजूमी होते हैं, ठीक है, वो फ्यूचर की कोई बात बताते हैं कि भाई ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये हफ्ता कैसा रहेगा। हमारे यहाँ तो अखबार आते हैं ना, तो एक या पहले आते थे, अब पता नहीं शायद वो आते भी हैं कि नहीं आते, तो सब ऑनलाइन हो गया है। तो उसके अंदर एक सफा होता था इकरा का सफा, ठीक है, और माशाल्लाह क्योंकि मुसलमान है तो इस वजह से इकरा का सफा जो है ना वो शुरू में होता था, और उसके अंदर जो है वो दीनी मजामीन होते थे, कुरान की आयात होती थी और हदीसें होती थी, और जो है वो आपके मसाइल और उनका हल होता था, और उसी अखबार के अंदर जो है वो ये भी होता था इल्म नुजूम, ठीक है, कि आज का हफ्ता कैसा रहेगा। और टॉरस का जो हमें भी कभी बचपन के अंदर हर चीज पढ़ते थे ना, तो फिर उसके बाद ये भी पढ़ते रहते थे कि भाई ये आपका जो सैयारा है तो वो उस सैयारे वालों के बारे में बताते थे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है तो इस डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, राइट। यानी ईमान और कुफर साथ साथ, ठीक है, क्योंकि इल्म नुजूम जो है ये बिल्कुल कुफर है, ठीक है, तो ये हमारा दीन है, ईमान और यानी ये जाहिर है ये अल्लाह का दीन तो नहीं है नबी अलैहिस्सलाम का दीन तो नहीं है कि कुफर को और ईमान को साथ साथ लेके चलें, ये अल्लाह का दीन तो नहीं है। लेकिन ये 21वीं या 20वीं सदी के, क्योंकि पिछले सदी में ही हम उस उम्र में थे, 20वीं सदी में, तो 20वीं सदी के मुसलमानों का ये दीन है। ठीक है, जाहिर है इस दीन का अल्लाह के दीन के साथ कोई वास्ता नहीं। अच्छा, इल्म नुजूम, तो इल्म नुजूम जो है वो सितारों को देख करके फ्यूचर का मालूम करना। जफर, तो जफर जो है ना, ये भी जिसको इल्म आदाद भी कहते हैं, कि हर अदद में कोई ना कोई जो है ना वो डिटेल छुपी हुई होती है, और जब मुख्तलिफ आदाद मिल जाते हैं तो फिर उनसे मजीद डिटेल जो है वो उनसे रिवील हो जाती है। ठीक है, तो उसको बाकायदा इल्म आदाद कहा जाता है और उसको जफर कहा जाता है। ठीक है, एक होता है इल्म रमल। ठीक है, रमल जो है ये लफ्ज भी अरबी जुबान का लफ्ज मिट्टी के लिए इस्तेमाल होता है, रेत के लिए। ठीक है, तो रेत में जो है ना वो कुछ लकीरें वगैरह खींचना और पता नहीं क्या उल्टी सीधी हरकतें करके रेत के ऊपर, ये जो इस इल्म के जानने वाले लोग थे तो वो इल्म रमल के जरिए से फ्यूचर के हालात बताते हैं। ठीक है, और आखिरी चीज तो आप सबको ही पता होगी, हाथ की लकीरें। ठीक है ना, पाम रीडिंग, ये तो शुगल है हमारे यहाँ बच्चों के यहाँ, बच्चियों में तो और भी ज्यादा ये आम होता है। मैं तुम्हारी हथेली देख के बताती हूँ कि क्या है, या अच्छा तुम्हारी ये वाली लाइन ज्यादा लंबी है, तुम्हारी उम्र ज्यादा लंबी हो गई, फलानी चीज पता नहीं क्या, लेकिन है ये। यानी ये हमें पता ना हो इनके बारे में, हम खेल तमाशे में ऐसी बस जो है वो थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लें इसके अंदर, लेकिन बाकायदा ये यानी इस्टेब्लिश्ड इल्म है, उलूम है ये। ठीक है, तो जिन्होंने हासिल किए होते हैं, चाहे वो शयातीन से हासिल किए हैं, चाहे वो किसी किसी भी जरिए से हासिल किए हों, लेकिन दे कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट फ्यूचर। ठीक है, तो ये जो है ना इल्म नुजूम, जफर, रमल या हथेली की लकीरों वगैरह से जो आइंदा वाकयात का इल्म हासिल किया जाता है, हजरत ये नहीं कह रहे कि नहीं किया जा सकता, ये सब झूठ बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, वाकई इल्म हासिल किया जाता है। या कश्फ व इल्हाम के जरिए किसी शख्स को वाकयात आइंदा का इल्म हो जाता है। ठीक है, कश्फ कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला जो है ना वो उसके ऊपर कोई रूह कोई बात खोल देते हैं, तो कशफा यक्षिफु, ये खोलने के मानी में इस्तेमाल। ठीक है, अल्लाह ने कोई बात खोल दी, इल्हाम कोई खबर डाल दी इंसान के दिल के अंदर, जैसे हमारे जहन में कोई कोई ख्याल आ गया। ठीक है, कोई थॉट आ गया, आप बैठी हुई हैं और आपके जहन में एकदम से जो है ना वो ख्याल है, ओहो मैंने हांडी चढ़ाई हुई थी वो जल जाएगी, हालांकि हांडी ने आवाज नहीं दी आपको, कोई बच्चा आपके पास भागता नहीं है कि अम्मी वो चूल्हे चूल्हा जल रहा है और वो जो है वो सालन जल रही है, इवन स्मेल भी नहीं आई सालन की, आप कहीं दूसरे कमरे में बैठी हुई है, स्मेल भी नहीं आ रही जलने की, एकदम से जहन के अंदर ख्याल आया ओहो वो जल जाएगी, भाग यहां जाकर के आपने चूल्हे को बंद किया, ये इल्हाम होता है, इसी को इल्हाम कहते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से डाला हुआ कोई भी ख्याल। ठीक है, नेकों को आता है तो उसके लिए जो है वो जरा ज्यादा इल्हाम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये किसी को भी आ सकता है, हत्ता के यानी सब कुछ ये इल्हाम के जरिए से अल्लाह ताला चलाते हैं, अल्लाह ताला ही जहनों के अंदर ख्याल डालते हैं कि तुम ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। अच्छा, तो कशफ व इल्हाम के जरिए किसी शख्स को वाकयात आइंदा का इल्म हो जाता है, या मानसून, मानसून लिखा उर्दू में इसको, मानसून का रुख और उसकी कुव्वत और रफ्तार को देखकर मौसमियात के माहिरीन होने वाले बादो बारह के मुतालिक पेशीन गुइयां करते हैं, और उनमें बहुत सी बातें सही भी हो जाती हैं। ये सब चीजें अवाम की नजर में इल्म गैब होती हैं, अवाम समझते हैं कि ये सारी चीजें इल्म गैब हैं, इसलिए आयत मज़कूरा पर शुबहात करते हैं। ठीक है, ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला यालमुहा इल्ला हू, तो इसके ऊपर शुबा होने लगता है कि भाई ये जो फ्यूचर की बातें हैं ये तो लोगों को पता चल गई, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नहीं अल्लाह के अलावा अलावा किसी को पता नहीं चलती, तो शक व शुबा होने लगता है कुरान की आयत के ऊपर, कि पुराने हकीम ने तो इल्म गैब को ज़ात हक जल्ल शानहू की खसूसियत बतलाया है, और मुशाहिदा हमारा ये है, मुशाहिदा हमारा ये है, मुशाहिदा साइंस। ठीक है, जबकि साइंस कहती मुशाहिदा यह है का मतलब अंग्रेजी में इसको आप साइंस से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, साइंस का मतलब सिर्फ जो है ना वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं होती, बल्कि आपने सुना होगा द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इवन स्पिरिचुअलिटी के लिए भी साइंस का लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है, या साइंस ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस ऑफ कैलकुलेशंस। तो भाई साइंस जो है ना, ये लफ्ज असल में इसका तर्जुमा बनता है मुशाहिदा, ठीक है, मुशाहिदा, ठीक है। तो साइंस ये कहती है जी, अंग्रेजी में उसको मुशाहिदा को ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो इज मुशाहिदा ऑब्जर्वेशन? यस इट इज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मुशाहिदा ये है कि वो दूसरे को भी हासिल हो जाता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज का, कोई भी फील्ड हो, कोई भी एरिया हो, कोई भी फील्ड हो, तो उसके मुशाहिदे करने से पता चलता है कि भाई लोगों को पहले से पता चल जाता है बहुत सारी चीजों को। अच्छा, इन्होंने पूछा कि सम पीपल टेल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन ऑन नोइंग द बर्थ डेट, इज दिस ऑल्सो कुफर ऑन नोइंग द बर्थ डेट? हाँ, तो बर्थ डेट जो है ना, ये इससे नुजूम, इसी से तो यानी क्या कहते हैं, इल्मे अदद के अंदर हो सकता है ये आता हूँ, ये जो जफर पता है ना, जफर, तो बर्थ डेट का ताल्लुक तो आदात के साथ है, ठीक है। अच्छा, ये सब होता कैसे है ना, कि भाई आदात का क्या ताल्लुक फ्यूचर के साथ, या सितारों का क्या ताल्लुक फ्यूचर के साथ, ठीक है, या हथेलियों का क्या ताल्लुक फ्यूचर के साथ? तो फिर ये कैसे पता चल जाता है फ्यूचर की बातें, हथेली देख करके या सितारों को देख करके? या तो ये चीज कभी हमने क्लास के अंदर पहले भी डिस्कस की हुई, तो ऐसा कैसे हो जाता है, कोई अगर आप में से बताना चाहे। ये मुस्तकबिल की चीजें, ये भाई मुस्तकबिल तो वो है जो अभी तक हुआ ही नहीं है, तो ये तो होगा। तो अब इसका सितारों के, भाई सितारों का मतलब ये होता है ना कि सितारों के जो है वो पैटर्न बनते हैं ना, आप आसमान पे देखें, फलाना सितारा इधर है, फिर दूसरा सितारा इधर है, और सितारे आहिस्ता आहिस्ता मूव भी कर रहे होते हैं, और उनकी कोई कॉन्स्टलेशंस भी बन रही होती हैं। तो इनका फ्यूचर से क्या ताल्लुक है, ये क्या होने वाला है, क्या मतलब है सब चीजों? फरिश्ता बात लेके नीचे आते हैं, फरिश्ते बात लेके नीचे आते हैं, और शैतान ये बात सुन लेता है, इस तरह कोई बात थी? नहीं, वो तो ठीक है, वो एक अलग चीज थी कि फरिश्ते बात लेकर के आते हैं, खबर लेकर के आते हैं और लोग सुन लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो तो एक जरिया है ना फ्यूचर के बात का मालूम होने का, ठीक है, कि भाई फरिश्ते, ये जिन्होंने सुन ली फरिश्ते की बात, फरिश्तों की बात, ठीक है, लेकिन हम तो सितारों के बारे में बात कर रहे हैं, हम तो इल्मे आदात के बारे में बात कर रहे हैं। इल्मे आदात ये तो एक अलग चैनल है, ये तो एक अलग रुख है, या एक अलग रास्ता है फ्यूचर के हालात वाले, और फरिश्तों की बात शैतान ने सुन ली, ये फ्यूचर की बात मालूम करने का एक अलग रास्ता है, ठीक है। हम तो इस वक्त जो है वो इल्मे आदात और हथेलियों की लकीरें और इनकी बातें कर रहे हैं। क्या लिखा हमने, विन लोगों की दोस्ती होती, विन अर्थात जिन कहना चाहते, जिन लोगों की दोस्ती होती है जिन्नात के साथ जो इंफॉर्मेशन उचक लेते हैं, ना तो वो तो जिन्नात वाला रास्ता हो गया ना। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इल्म हासिल करने के लिए आप जो है वो एक रास्ता ये इख्तियार कर सकती हैं कि किताब पढ़ लें, उससे भी आपको इल्म हासिल हो जाएगा, और दूसरा रास्ता आजकल के दौर में आप क्या इस्तेमाल कर सकती हैं कि आप गूगल पे जाकर के चीज को सर्च कर लें, तो गूगल के जरिए से, यानी एक रास्ता हो गया किताब, जो कागज की किताब होती है, एक रास्ता हो गया आपका लैपटॉप, ठीक है, ये भी इल्म हासिल करने का एक रास्ता है। उसी तरह से इल्म हासिल करने का एक और रास्ता ये है कि किसी आलिम के पास चले जाएं, या उस फील्ड का जो भी आलिम है उसके पास चले जाएं, उससे पूछ लें कि भाई ये ऐसे 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 क्या है, क्या मतलब है इस बात। तो ये तीन रास्ते हो गए ना इल्म हासिल करने के। तो हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि शयातीन वाला रास्ता तो माशाल्लाह सबको याद है, लेकिन ये सितारों वाला रास्ता क्या होता है भाई? ठीक है, हमारे शैतान करीन से सबको शायद, माशाल्लाह अच्छी बात यह है कि सबको अब शैतान याद आ गया, याद हो गया। पहले किसी को शैतान याद ही नहीं आता, हम सवाल पूछ पूछ करके थक जाते थे कि भाई ये क्या है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। जवाब होता था शैतान, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता था कि शैतान, किसी को शैतान याद ही नहीं आता था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने एहसान फरमाया कि अब हमें शैतान याद आना शुरू हो गया। ठीक है, शैतान याद आना कोई अच्छी बात इस तरह से है कि ताकि अब हमें फिक्र पड़ गई है कि अब शैतान जो है वो हमें हलाक करने के दरपे हुआ हुआ है, तो अब उसे बचने की तरकीब करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात हो गई। लेकिन अब यहाँ पे शैतान वो बार बार बोल रहे हैं कि नहीं भाई, शैतान के रास्ते का हम आपसे पूछ ही नहीं रहे हैं, हम आपसे दूसरा रास्ता के पूछ रहे हैं। अब फिर भी सब शैतान शैतान के चले जाते। तमाम इल्म अल्लाह ने अता किया मगर इनका हासिल करना हराम है, ये इन्होंने फतवा डाल दिया माशाल्लाह। हम आपसे फतवा को थोड़ी पूछ रहे हैं। बहरहाल चले चले, देखें सितारों की तरतीब या सितारों की रफ्तार, ठीक है, इसका फ्यूचर के उलूम से क्या ताल्लुक। उसी तरीके से जो इल्म आदाद है, नंबर्स का जो इल्म है, इसका फ्यूचर के साथ क्या ताल्लुक। ठीक है, तो भाई उसका ये ताल्लुक है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुछ भी होने वाला है, ठीक है, तो अल्लाह ताला के यहाँ तो सब कुछ डिसाइडेड है ना, सारा इल्म जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ तय शुदा है। ठीक है, अल्लाह ताला के यहाँ तय शुदा है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। अब ये जो तय शुदा इल्म है ना, ठीक है ना, उसको अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीजों के अंदर स्टोर किया हुआ है, मुख्तलिफ चीजों में स्टोर किया, सेव किया हुआ है। ठीक है, तो अब किन चीजों में सेव किया हुआ है, उस इल्म का कुछ हिस्सा जो है वो अल्लाह ताला ने, ये जो इंसान की हाथ की लकीरें होती है ना, हथेली की लकीरें, उन लकीरों में स्टोर किया हुआ है। ठीक है ना, कि ये लकीर ऐसे इधर से जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर इधर लंबी चली जाएगी, तो इसका ये मतलब है कि ये ऐसे हो, फिर दूसरी लकीर है वो ऐसे जाएगी, ऐसे, उसका मतलब ये है कि ऐसे होगा। तो ये इल्म है, गोया के आपकी लकीर के ऊपर एक लैंग्वेज, आपकी हथेली के ऊपर एक लैंग्वेज लिखी हुई है, उस लैंग्वेज के अंदर आपकी फ्यूचर की बातें लिखी हुई है। ठीक है, जैसे अलिफ बा ता सा से एक लैंग्वेज बनती है ना, जिसको उर्दू जुबान कहते हैं या अरबी जुबान कहते हैं। ठीक है ना, तो अब आप जो है वो मिसाल के तौर पर समझाने की खातिर कि आप जो है वो कल के बारे में ना अपना प्लान बनाए, ठीक है ना, थिंग्स टू डू लिस्ट फॉर टुमारो, कि मैंने कल ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब जो आपने अपने जहन में एक प्लान बना लिया कि मुझे कल ये करना है, अब आप उसको सेव करें कहीं पर, तो आप कहाँ सेव कर सकते हैं, आप जो है वो उर्दू जुबान में उसको अपनी कॉपी में लिख सकती हैं कि मैंने कल ये करना है, ये करना है, ये करना है। आप जो है वो अंग्रेजी जुबान के अंदर उसको किसी कागज के ऊपर लिख सकती हैं, टुमारो आई एम गोइंग टू डू दिस, टुमारो आई विल डू दिस, आई विल गो देयर, आई विल डू, आई विल गिव ए गिफ्ट टू माई फ्रेंड, अंग्रेजी में आपने उसको सेव कर दिया किसी कागज के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा आप जो है वो अपने लैपटॉप के ऊपर किसी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो अपना कल का प्रोग्राम भी लिख सकती हैं। ठीक है, आप जो है वो अपने फोन के ऊपर किसी थिंग्स टू डू एप्लीकेशन के अंदर भी अपना कल का प्रोग्राम चाइनीज जुबान में लिख दें। ठीक है ना, अगर आपको चाइनीज आती है आप चाइनीज जुबान में कहीं पर लिख दें। आपने उर्दू में भी कल का प्रोग्राम लिख दिया, आपने अंग्रेजी में भी लिख दिया, आपने लैपटॉप पर भी लिख दिया, आपने जो है वो फोन के अंदर भी लिख दिया, जिन जुबानों का आपके पास इल्म था उन उन जुबानों में आपने लिख दिया। अब कोई दूसरा शख्स आए और वो कहे कि यार मुझे पता करना है कि इन्होंने कल के लिए क्या क्या प्लान किया हुआ है, तो चूंकि इन्होंने अपने प्लान को लिख दिया है, तो अब जहां जहां इन्होंने लिखा है ना और जिस जिस लैंग्वेज में लिखा है, अगर मैं ये मालूम कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कल ये क्या करेंगे। ठीक है ना, तो अब उसको क्या चीज चाहिए, उसको ये इल्म चाहिए कि कहाँ लिखा हुआ है, और ये इल्म चाहिए कि किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर ये दोनों चीजें पता चल गई तो वो पता कर लेगा कि आपने कल क्या क्या करना है ना। तो यही मामला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये निजाम ऐसे ही चल रहा है कि अल्लाह ताला ने फैसला भी किया हुआ है कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, परसों क्या करना है, राइट, 1000 साल के बाद क्या करना है, सब कुछ तय किया अल्लाह ताला।
और अल्लाह ताला ने इन बातों को लिख भी दिया है, सितारों के पैटर्न्स के अंदर लिख दिया है, हाथ की हथेली की लकीरों के अंदर लिख दिया है, ठीक है। और जो है वो जो नंबरिंग सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया कि 1, 2, 3, फिर एक को एक से जर्ब दे दें तो फिर वो एक ही बनता है, और 2 को 2 से जर्ब दें तो वो 4 बन जाता है, और से डिवाइड कर दें तो ये जो है वो ऐसा बन जाता है, और माइनस कर दें तो ऐसा बन जाता है। ये सारा जो अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है नंबर्स का, इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फ्यूचर के हालात को लिख दिया। अब जो नजूमी होते हैं वो सितारों के पैटर्न्स का इल्म हासिल करके उसके जरिए से जो है वो फ्यूचर का पता करते हैं, और जो पाम रीडर्स होते हैं वो हाथ की लकीरों का इल्म हासिल करके इसको जो है वो पता करते हैं, ठीक है ना। और जो रमल के एक्सपर्ट होते हैं वो रेत के ऊपर इस तरह से पता नहीं क्या क्या हुआ, ये तो हमें तो ना तो पाम रीडिंग आती है ना तो हमें जो है वो सितारों का अल्लाह का शुक्र है नहीं आता, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के सब कुफर है, अल्लाह का शुक्र है कुफर का इल्म नहीं है हमारे पास कि कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इल्म हासिल करने की कोई कोशिश ना करें, हाँ जहन्नुम चाहिए तो फिर वो राइट अहेड, लेकिन अदरवाइज नहीं करें, ठीक है। क्या अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बता दी। चलो मैं जो हूँ ना, मैं अब इनका इल्म हासिल करती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहना पड़ेगा ना जो पिछली क्लास में कहा था, गो टू हेल, राइट। और क्या कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा मामला है, यानी फ्यूचर का डिसाइड करने वाला वो नजूमी नहीं होता, वो पाम रीडर नहीं होता, वो अल्लाह ही है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने ये निजाम बनाया है, तो अब जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलता है कि भाई मैंने तो अल्लाह से मांगना है, अल्लाह की इबादत करनी है ताकि मुझे अल्लाह ताला की रजा मिल जाए, वो कामयाब हो जाता है। और जो अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानता और इन चक्करों में पड़ जाता है, ठीक है, तो फिर वो फिर नाकाम हो जाता है, अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाते हैं और उसको फिर जहन्नम में के हवाले कर देते हैं, ठीक है ना। ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। अच्छा, और क्या लिखा उन्होंने, तमाम इल्म अल्लाह ने अता किए मगर बहुत से लोग को कहते सुने थे कि जो इंसान मर जाते हैं वो सितारे बन जाते हैं, क्या ये सही बात है, आपका क्या ख्याल है, जल्दी से मर जाए ताकि आप भी सितारा बन जाए। बल्कि वो तो सारी हदीस भी अल्लाह खैर करे, आप पता नहीं कुछ हकीकत में ना समझें, समझ जाए इन चीजों के। वो घोल के पीने वाली भी तो थी ना एक, उनको कहा कि भाई आप घोल के पी जाए फलाने किताब को, तो उन्होंने किताब के सफ़े फाड़ फाड़ करके जो है ना वो पानी के अंदर घोलने शुरू कर दिए, ठीक है। तो इस वजह से डर लगता है बात करते हुए कि पता नहीं वाकई जो है वो कोई मर के सितारा बनने की कोशिश ना ना शुरू कर दे। खैर, असहाबी का नजूम वाली हदीस याद आ गई थी कि मेरे सहाबा तो नजूम सितारों जैसे हैं, नहीं इसका कोई ताल्लुक नहीं, ठीक। आपका सवाल का जवाब यह है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी ठीक आपको नहीं लगता। चले, वाजे जवाब वाजे रहे, जवाब वाजे है कि कश्फ व इल्हाम या वही के जरिए अगर अल्लाह ताला ने अपने किसी बंदे को किसी आइंदा वाकई की इत्तला दे दी तो कुरानी इस्तेलाह में वो इल्म गैब नहीं रहा, ठीक है। इसी तरह असबाब व आलात के जरिए जो इल्म हासिल किया जा सके वो भी इस्तेलाह है कुरानी के लिहाज से इल्म गैब नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी के पेट में जो है वो कैंसरस ट्यूमर है, ठीक है ना। अब ना तो उसको पता कि मेरे पेट में कैंसर का ट्यूमर है, ना किसी और देखने वाले को पता कि इसके पेट में कैंसर का ट्यूमर बना हुआ है, लेकिन जब वो अल्ट्रासाउंड मशीन के नीचे लेटाते हैं उसको, ठीक है, या एमआरआई, पता नहीं क्या क्या, अब ये सारे भाई डॉक्टर लोगों को ज्यादा पता है, एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड है, तो एक्सरे है, तो सीटी स्कैन है। तो अब जब सीटी स्कैन करते हैं तो उसको पता चल जाता है कि अच्छा भाई इसके अंदर जो है वो ट्यूमर है इनके अंदर, तो और ये भी पता चल जाता है कि वो बिनाइन ट्यूमर है कि वो कैंसरस ट्यूमर है, ये भी पता चल जाता है कि उसका साइज कितना बड़ा है, ठीक है। तो अब ये इल्मे गैब नहीं है, ये इल्मे गैब नहीं है, जस्ट बिकॉज हमें नजर नहीं आ रहा उसके पेट में ट्यूमर, लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीन के जरिए से वो नजर आ रहा है, तो भाई अब ये इल्म गायब कोई थोड़ी है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि असबाब और आलात के जरिए से जो इल्म हासिल किया जा सके वो भी इसमें गायब नहीं है, जैसे महकमा मौसमियात की खबरें या नब्ज देखकर मरीज के मख्फी हालात बतला देना, वजह यह है कि महकमा मौसमियात को या किसी हकीम डॉक्टर को ऐसी खबरें देने का मौका जब ही हाथ आया जब इन वाकयात का मादा पैदा होकर जाहिर हो जाता है। ठीक है, हत्ता के नब्ज देख करके जो बता देते हैं ना कि जी अब आपको ये वाली बीमारी है और ये ऐसे बढ़ जाएगी और इसको ये दवा जो है वो उससे आपने ट्रीट करना है, तो वो भी इल्मे गैब नहीं है, वो उसके बीमारी के हालात जाहिर हो चुके हैं। हाँ, हर बंदे को पढ़ने नहीं आते, हर बंदे को जो है वो समझ में नहीं आते, हकीम साहब ने इसका इल्म हासिल किया उनको समझ में आ जाते। ठीक है, अवाम बेखबर रहते हैं इन सब चीजों से, लेकिन वो हकीम साहब चूंकि अब खवास इल्म हासिल कर लिया ना उन्होंने इसका, अब वो खवास बन गया, वो अवाम नहीं रहे, उनको समझ में आ जाता है, अवाम बेखबर रहते हैं। और जब ये मादा कवी हो जाता है तो उसका जो आम हो जाता है, यानी कवी होने का मतलब इतना क्लियर हो जाता है कि इवन आम आदमी को भी नजर आना शुरू हो जाए। यही वजह है कि महकमा मौसमियात महीना दो महीना बाद होने वाली बारिश की खबर आज नहीं दे सकता है, क्योंकि अभी इस बारिश का मादा सामने नहीं आ रहा है। यानी महीना दो महीने में जो है वो बारिश का मादा कुछ ना कुछ क्रिएट हो जाता है, एटमोस्फेयर में आ जाता है, फिर उससे जो है वो प्रिडिक्शन की जा सकती हैं, लेकिन उससे ज्यादा से पहले प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती हैं। इसी तरह कोई हकीम डॉक्टर साल दो साल पहले की खाई हुई या 2 साल बाद खाई जाने वाली दवा या गिजा वगैरह का पता आज नब्ज देख कर नहीं दे सकता, क्योंकि उसका कोई असर आदतन नब्ज में नहीं होता है। यानी इंसान की जो नब्ज चल रही होती है, हार्ट बीट जो हो रही होती है, उस हार्ट बीट के ऊपर जो है वो हमारे हालात का, हमारी जो है वो गिजा का असर पड़ रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको कोई ऐसा वाकया पेश आ जाए जो कि बहुत ही खौफनाक हो या जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बात हो, तो हार्ट बीट तेज होती है कि नहीं होती, हत्ता कि ऐसा लगता है जैसे कान में भी दिल की धड़कन की आवाज आ रही है। तो ये क्या हुआ, बैरूनी वाकये का असर आपके दिल की रफ्तार के ऊपर हो गया है ना। तो भाई जिस तरह से किसी आंखों देखी चीज का असर दिल की रफ्तार के ऊपर हो जाता है, उसी तरीके से जो हम खाना खाते हैं, जो हम चीज पीते हैं, या हम दूसरे अगर कोई ऐसे मसले हमारे चल रहे हैं, हर चीज का असर जो है वो नब्ज के ऊपर हो रहा होता है। ठीक है, तो वही जो हकीम साहब होते हैं जिन्होंने ये इल्म हासिल किया है, तो अब उनको उसके रफ्तार से पता चल जाता है कि अच्छा ये मसला था, ये मसला था, वो मसला। खुलासा ये है कि ये सब चीजें वो हैं कि किसी चीज के आसार और निशानात देखकर उसके वजूद की खबर दी जाती है, और जब उसके आसार और निशानात और मादा जाहिर हो चुका, अब वो गैब में शामिल नहीं रहा बल्कि मुशाहिदे में आ गया, अब वो ऑब्जर्वेबल बन गया। चाहे वो आप अपनी आंख से ऑब्जर्व कर सकते हो, चाहे वो आपने किसी मशीन से ऑब्जर्व कर सकते, लेकिन वो है तो ऑब्जर्वेबल, अब तो मुशाहिदे में आ गई वो चीज। ठीक है, तो अच्छा, अलबत्ता लतीफ या जरीफ होने की वजह से आम मुशाहिदे में अभी नहीं आया, जब कुव्वत पकड़ देगा तो आम मुशाहिदे में भी आ जाएगा। लतीफ का मतलब है कि अभी बहुत ही बारीक है, तो हर कोई नहीं देख सकता उसको, सवाए माइक्रोस्कोप के जरिए से आप देख सकते हैं उस चीज को, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर बगैर माइक्रोस्कोप के भी आप उसको देख सकते हैं, इसी को जईफ कहा। जईफ का मतलब अब ओल्ड हो गया ना, अब दूसरे लोग भी इसको देख सकते हैं, जब वो बिल्कुल नया नया था, बहुत छोटा सा था, तो लोग नहीं देख सकते। दिस वुड ऑल्सो इंक्लूड रेन थ्रू क्लाउड सीलिंग, दिस वुड ऑल्सो इंक्लूड रेन थ्रू क्लाउड सीलिंग। भाई वो तो बिल्कुल ही यानी गायब भी नहीं है वो, एक तो होता है ना गायब, ठीक है, एक होता है कि नजरों से गायब, वो तो नजरों से भी गायब नहीं है, वो तो यानी बहुत ही क्लियर किस्म की चीज होती है कि भाई इस क्लाउड में जाकर के जो है वो यानी क्या क्या वो केमिकल डाल रहे हैं या कोई, तो ऑफ कोर्स इसके अलावा इन सब चीजों से हासिल होने वाली वाकफियत सब कुछ होने के बाद भी तखमीना व अंदाजा ही की हैसियत रखती है। इल्म जो यकीन का नाम है, इल्म जो यकीन का नाम है, वो इनमें से किसी चीज से किसी को हासिल नहीं होता। यही वजह है कि इन खबरों के गलत होने के बेशुमार वाकयात आए दिन पेश आते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, इल्म रमल, इल्म जफर, इल्म यानी पाम रीडिंग का जो इल्म है, और जो नुजूम का इल्म है, ठीक है, हत्ता कि इवन जो अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह मशीन्स के जरिए से भी जो इल्म होता है, तो ये भी अब डिपेंड करता है कि जो इल्म रखने वाला शख्स है वो कितना एक्सपर्ट है इसके अंदर, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर आपको पता ही होगा कि जो सीटी स्कैन, अल्ट्रा स्कैन, ये रेडियोलॉजिस्ट ये वाला काम करते हैं, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट, उन डॉक्टर्स को रेडियोलॉजिस्ट कहा जाता है जो कि अल्ट्रा स्कैन की, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पढ़ते हैं, उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, अल्ट्रासाउंड की स्कैन देखते हैं और उसके ऊपर अपना रिपोर्ट बनाते हैं। अब अगर रेडियोलॉजिस्ट साहब जो है वो कोई चीटिंग करके पास हुए हुए रेडियोलॉजिस्ट थे या थी, ठीक है, उन्होंने सही तरीके से अपना इल्म हासिल नहीं किया, तो अब जाहिर सी बात है जब वो रिपोर्ट को देख, यानी क्या कहते हैं, स्कैंड इमेज को देख करके अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, तो वो उसके अंदर गलतियां करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनका इल्म जो है वो कच्चा है। उसी तरीके से इल्म नजूम जिस शख्स को हासिल होता है, सारे के सारे जो है वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स नहीं होते, ठीक है, तो गलतियां करते हैं, तखमीने लगाते हैं, अजम्पशंस करते हैं। अच्छा, अल्ट्रासाउंड वाला तो मसला यह है कि अगर एक रेडियोलॉजिस्ट ने गलत लिखा तो दूसरा रेडियोलॉजिस्ट जो है वो उसकी गलती को पकड़ लेगा, इसी वजह से ये लोग जो होते हैं ना बड़े, उनको सही से पढ़ाई वढ़ाई करनी पड़ती है। इल्म नजूम का तो किसी को पता ही, कोई पता ही कुछ नहीं किसी को, इल्म नजूम क्या चीज होती है। तो अब नजूमी साहब तो बोले किसी को पता ही नहीं कि ये ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, इस वजह से ना वहां पर तो और भी ज्यादा कच्चा मामला, ठीक है, अपनी तरफ से तुक्के ज्यादा मारते हैं, और जो है ना वो थोड़ा बहुत जो उन्होंने किसी से इल्म हासिल किया होता है उसकी बुनियाद पर कुछ बता देते हैं। यही मामला जो है वो उसका भी है। थोड़ा तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, हम खत्म कर रहे हैं। ये जो आपने सुना ही होगा, कुछ साल पहले बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था वो सिम्पसन्स के कार्टून हैं, कार्टून के अंदर जो है वो बड़ा फ्यूचर के इवेंट्स बता दिए गए हैं, ठीक है। तो भाई सिम्पसन्स कार्टून जो होता है ये तो पता नहीं हफ्ते में एक दफा आता है या हफ्ते में दो दफा आता है, तो 25-30 साल से ये कार्टून चल रहा है, तो इसके तो हजारों एपिसोड्स आए हैं। अब उन हजारों एपिसोड्स में से 20-25 में जो उन्होंने चीजें दिखाई थी वो ठीक हो गई, ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ एपिसोड्स जिनके अंदर जो उन्होंने चीजें दिखाई वो कोई ठीक नहीं हुई है। हालांकि उसका तो तरीका यही है कि वो तो फ्यूचर के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं, तो भाई बाकी चीजें क्यों ठीक क्यों नहीं है, इसलिए ही क्योंकि उन्होंने भी जो सिम्पसन्स कार्टून बनाए हैं ना तो वो भी इन्हीं जराए के जरिए से बनाए, ठीक है, लेकिन जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उनको मिली जिसका उनको खुद भी नहीं पता था कि फलानी चीज जो है वो हिट हो जाएगी फ्यूचर में जाकर के और फलानी चीज हिट नहीं होगी, उनको भी नहीं पता ये बात, ये वाली बात, ठीक है। तो उन्होंने सबके ऊपर कार्टून बना दिए, जो भी इल्म हासिल किया इस तरीके से जफर के जरिए से या रमल के जरिए से या जो नजूम के जरिए से या शयातीन से चीजें पूछ पूछ करके, तो अब उसमें से कुछ जो है वो ठीक निकल आए और ज्यादातर वो गलत निकला, ठीक है। चले यहाँ पे हम आज की क्लास खत्म करते हैं, अल्लाह ताला इस बात को हमारे हक में हुज्जत बनाए और हमारे इनके नाफे होने में मदद मदद फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।